शीर्षक भक्ति काव्य और लोक धर्म। पृष्ठ संख्या 275। लोक शब्द अनेकार्थी शब्द है। अंग्रेजी में जिसे फोक कहते हैं, साहित्य एवं कलाओं एवं सामान्य व्यवहार में हिंदी में उसे लोक के रूप में समझा जाता है। उदाहरण के लिए लोकगीत, लोक कलाएं आदि। यहाँ लोक परिष्कृत, परिनिष्ठित या श्रेष्ठ का विलोम है। लोक शब्द हिंदी में साधारण जन के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिसका विलोम अभिजन या अभिजात वर्गों के लोग हैं। जब शुक्ल जी लोक जीवन की बात करते हैं, उनका मतलब प्रायः साधारण जनता के इसी विशाल भाग से होता है। लोक शब्द वस्तु जगत, बाह्य जगत या जिसे हम संसार कहते हैं, उसके लिए भी प्रयुक्त होता है। तब इसके विलोम के रूप में परलोक शब्द का व्यवहार चलता है। साधारणतः लोक का अर्थ हम इसी संसार से लेते हैं, उस संसार से लेते हैं जिसमें मनुष्य रहता है और अपने क्रियाकलाप करता है। यह संसार या समाज जिसमें हम रहते हैं एक सा नहीं है। इसमें अमीर भी हैं, गरीब भी, उच्च वर्ग के लोग भी हैं, निम्न वर्गों के लोग भी, शिक्षित अशिक्षित सभी इसमें समाहित हैं। इन सबके अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते भी हैं। हमारा यह समाज वर्गों में बटा हुआ समाज है, जिसमें अधिकांश जनता श्रम करने वाली जनता है और एक छोटा अंश वह है जो संपत्तिशाली है, बिना श्रम किए दूसरों के श्रम से लाभ कमाता है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है। समाज की गतिविधियों, आचार व्यवहारों, कानून कायदों आदि का निर्माता और नियंता है। वर्गबद्ध समाजों में प्रभुत्वशाली वर्ग की विचारधारा ही समाज की प्रधान विचारधारा होती है। समाज में उसी का पालन अनुपालन होता है। अपने देश की बात करें तो परंपरागत से चले आते हुए सारे धर्मशास्त्र इसी प्रभुत्वशाली वर्ग के रचे हुए हैं, जिन्हें उसने संपूर्ण समाज के लिए रचा है और संपूर्ण समाज उसका पालन करे, ऐसी व्यवस्था भी उसने दी है। पृष्ठ संख्या 276। जिस लोक और परलोक की बात हमने ऊपर की है, वे अवधारणाएं भी इसी वर्ग की बनाई हुई है। लोक से आगे परलोक की कल्पना और व्याख्या उसकी अपनी विशिष्ट देन है। परलोक की चिंता में जो आज सारा भारतीय समाज मशगूल है, वह इतनी प्रभुत्वशाली वर्ग की सोच का सुफल ही है। जो शास्त्र उसने रचे हैं, उसमें इस परलोक के बारे में बहुविध चिंतित है, जो परंपरा से देश की जनता के मन मस्तिष्क में विद्यमान चला आ रहा है। पैराग्राफ चेंज। किंतु चूंकि हमारा देश विशाल देश है और इसकी बहुसंख्यक जनता श्रम करने वाली, किसानी, कारीगरी, मजदूरी या जीविकोपार्जन के अन्य साधनों को स्वीकार करने वाली जनता है, अधिकतर शिक्षित और गांव में रहने वाली जनता, और इस जनता में साधारण जन के अलावा साधारण जन में भी साधारण बहुत सी जनजातियां हैं, अस्पृश्य और अंत्यज। अतएव शास्त्रोक्त विधि विधानों से भिन्न उनका संबंध सामाजिक आचार व्यवहार से हो या धार्मिक आचार व्यवहारों से, साधारण जनता की एक अपनी वैविध्यपूर्ण सामाजिक, धार्मिक, आचार संहिता, मान्यताएं, रीति रिवाज, कानून कायदे, आस्था विश्वास आदि भी यहाँ शास्त्रोक्त विधि विधानों के समानांतर विद्यमान भी रहे हैं और आचरित भी होते रहे हैं। ऐसा इस नाते भी हुआ है कि जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उनकी प्रभुता के पहले उनसे भिन्न दूसरी जातियों और कबीलों की भी सुसंपन्न सभ्यताएं यहाँ विद्यमान रही हैं। उनकी अपनी संस्कृति भी यहाँ फलती फूलती रही है। इसके अलावा समय समय पर अनेक जातियाँ और कबीले बाहर से यहाँ आते रहे हैं, बसते रहे हैं और कुछ यहाँ की विद्यमान सभ्यता और संस्कृति से लेते हुए साथ ही अपना बहुत कुछ उन्हें देते हुए यहाँ घुल मिल कर रह जाते हैं। कालांतर में जब वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ तथा अन्य नाना शास्त्र आर्य जाति द्वारा रचे गए, तो स्वभावतः उनसे साधारण जनता में प्रचलित सामाजिक, धार्मिक, आचारों, विश्वासों, मान्यताओं का कहीं मेल बैठा और कहीं नहीं बैठा। स्थिति यही हुई कि शास्त्र और लोक समानांतर कभी मिलते तो कभी टकराते रहते। यहाँ अलगाव अधिक हुआ तो प्रभुत्वशाली वर्गों ने शास्त्रों का सहारा लेकर जनता के उन लोगों को बाहरी घोषित कर दिया। वर्ण तथा चली आ रही जाति व्यवस्था से बहिष्कृत कर कर दिया। ऐसे लोगों तथा समुदायों के बीच धार्मिक सामाजिक रीति रिवाज और कानून कायदे शास्त्र से एकदम अलग हो गए और लोग प्रचलित दूसरे आचार व्यवहारों के साथ अपने ढंग से चलने लगे। लोक और शास्त्र में टकराव की स्थितियां तो यूं प्रत्येक युग में विद्यमान रही। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायतों के अलावा आगे चलकर सिद्धों और नाथों ने भी चली आ रही वेद शास्त्र विहित मान्यताओं, विचारों, आचार व्यवहारों को चुनौती दी और अपना अलग रास्ता बनाया। प्रश्न संख्या 277, जिसे हम भक्ति का युग कहते हैं, लोक और शास्त्र का द्वंद्व उसमें भी उभरा। और उस दृष्टि से यदि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति युग का मुख्य अंतर विरोध लोक और शास्त्र का द्वंद्व मानते हैं तो गलत नहीं है। अपने ढंग से आचार्य शुक्ल यह भी कहते हैं, जब वे विद्यमान तमाम सारी धार्मिक सामाजिक अव्यवस्था के बीच तुलसी के आविर्भाव को, उनके समन्वयवाद को, उनके द्वारा लोक को सही पटरी पर लाने और उसे आर्य शास्त्रानुमोदित पथ पर आगे बढ़ाने का श्रेय उन्हें देते हैं। द्वंद्व की ये स्थितियां न होती तो शुक्ल जी द्वारा तुलसीदास जी के इस युगांतकारी महत्व का मतलब क्या है? बहरहाल, यह शुक्ल जी का मत है जो यह सिद्ध करता है कि गोस्वामी जी के समय में भी लोक और शास्त्र के बीच शुक्ल जी की सोच के अनुसार जैसा तालमेल अपेक्षित है वैसा नहीं था। यह भी स्पष्ट है कि भक्ति आंदोलन के समय लोक शास्त्र के ऊपर प्रबल हो उठा था, अन्यथा डॉक्टर रामविलास शर्मा भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहकर विज्ञापित न करते। उन्होंने लिखा है कि किसी समय रहस्यवाद ने साहित्य और समाज में बड़ी क्रांतिकारी भूमिका पूरी की थी। मनुष्य में ब्रह्म दर्शन करके कवियों ने मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की थी। धर्म, संप्रदाय, वर्ण, मत मतांतर आदि के भेदों का विरोध करके मानवता की प्रतिष्ठा की थी। पुरोहित और देववाणु के दर्प से आतंकित न होकर उसने लोक भाषाओं के साहित्य में प्रतिष्ठा की थी। जाहिर तौर पर डॉक्टर रामविलास शर्मा का इशारा सगुण भक्ति कविता की ओर न होकर निर्गुण भक्ति कविता और संतों की ओर है। कारण रहस्यवाद की बात प्रायः उन्हीं के संदर्भ में की जाती है तथा धर्म, संप्रदाय, वर्ण और मत मतांतर के भेदों का विरोध करते हुए मानवता की एक मानवता की बात उन्हीं के माध्यम से सामने आई थी। अनेक बातों में समान होते हुए भी सामाजिक धार्मिक विचारों और उनके आचरण को लेकर निर्गुण और सगुण संतों और भक्तों का स्वर एक नहीं है। निर्गुण संत जहाँ परंपरागत वेद शास्त्र आदि को चुनौती देते हुए उनकी बुनियाद का ही विरोध करते हैं, वहाँ सगुण भक्त, विशेषतः तुलसीदास, तमाम सारे लचीलेपन के बावजूद बुनियादी तौर पर आर्य शास्त्रानुमोदित धर्म तथा समाज व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसी नाते शुक्ल जी को प्रिय है। तभी शुक्ल जी द्वारा दी गई लोक धर्म की परिभाषा पृष्ठ संख्या 278 के भीतर तुलसी के विचार और उनके अर्थ को अंट आते हैं। निर्गुण संतों के विचार तथा अर्थ नहीं अंटते और शुक्ल जी सीधे उनका विरोध करते हैं और उनके विचार तथा अर्थों के सामाजिक दृष्टि से लोक की दृष्टि से अहेतुक बताते हैं। लोक धर्म की शुक्ल जी की परिभाषा यह है, संसार जैसा है वैसा मानकर उसके बीच से एक एक कोने को स्पर्श करता हुआ जो धर्म निकलेगा वही लोक धर्म होगा। जीवन के किसी एक अंग को मात्र स्पर्श करने वाला धर्म लोक धर्म नहीं, डॉट डॉट डॉट। जनता की प्रवृत्तियों का औसत निकलने पर धर्म का जो मान निर्धारित होता है वही लोक धर्म होता है, डॉट डॉट डॉट। जिस धर्म की रक्षा से लोक की रक्षा होती है, जिससे समाज चलता है, वह यह व्यापक धर्म है। सत और असत, भले और बुरे के मेल का नाम संसार है। पापी और पुण्यात्मा, परोपकारी और अत्याचारी, सज्जन और दुर्जन सदा से संसार में रहते आए हैं और सदा रहेंगे। शुक्ल जी आगे कहते हैं और अब अधिक स्पष्ट होकर कहते हैं, ईसाई, बौद्ध, जैन इत्यादि वैराग्य प्रधान मतों में साधना के जो धर्म उपदेश दिए गए उनका पालन अलग अलग व्यक्तियों ने चाहे कुछ किया हो पर सारे समाज ने नहीं किया। अतः व्यक्तिगत साधना के कोरे उपदेशों की तड़क भड़क दिखाकर लोक धर्म के प्रति उपेक्षा प्रकट करना पाखंड ही नहीं है, उस समाज के प्रति घोर कृतघ्नता भी है जिसके बीच कायापलट है। लोक मर्यादा का उल्लंघन, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार, अनधिकार चर्चा, भक्ति और साधुता का मिथ्या दंभ, मूर्खता छिपाने के लिए वेद और शास्त्र की निंदा, ये सब बातें ऐसी थी जिनसे गोस्वामी जी की अंतरात्मा बहुत व्यथित हुई। जाहिर है कि शुक्ल जी यहाँ वेद और शास्त्र विहित उन्हीं मर्यादाओं और विचारों का समर्थन कर रहे हैं जिन्हें ऊपर हम समाज की प्रभुत्व वाली वर्गों की देन कह चुके हैं और जिनके खिलाफ ही बुद्ध, महावीर, लोकायत, सिद्धनाथ, कबीर तथा दूसरे संत उठ खड़े हुए थे। अतएव इस विषय पर शुक्ल जी पूर्वाग्रह बिल्कुल साफ है कि स्पष्टतः इस बात का साक्ष्य भी देते हैं कि न केवल भक्ति आंदोलन के समय लोक और शास्त्र का द्वंद्व प्रबल था, जहाँ तक लोक धर्म का सवाल है, निर्गुण संत तथा सगुण भक्तों में भी उसे लेकर मतभेद ही नहीं था। अनेक स्तरों पर वे एक दूसरे के विरोध में भी खड़े थे। प्रश्न संख्या 279। ऐसी स्थिति में स्पष्ट हो जाता है कि जिसे लोग धर्म कहते हैं उसकी अवधारणा तथा उसका पालन अनुपालन समूचे भक्ति काव्य में एक जैसा नहीं है। अलग अलग संतों और भक्तों में उसका स्वरूप अलग अलग है। संतों तथा भक्तों में तो वह अलग है ही। मसलन कबीर की बात ले, शुक्ल जी के मत से, जैसा कि उनके ऊपर के कथन से स्पष्ट है, कबीर उनकी परिकल्पना के लोक धर्म के विरोधी हैं। वे पढ़े लिखे न होकर भी ज्ञान की बात करते हैं, वेद और शास्त्र की आलोचना करते हैं, पंडितों को चुनौती देते हैं, उनकी मखोल उड़ाते हैं, समाज की व्यवस्था का तिरस्कार करते हैं, आदि आदि। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर का यह आचरण बुरा नहीं लगता। वे इसमें कबीर के अस्वीकार का साहस देखते हैं, उनके व्यक्तित्व का तेज पाते हैं और उनकी साधना का गहराई और निष्ठा का प्रमाण पाते हैं। किंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ कबीर के इस आचरण में शास्त्र और लोक का द्वंद्व को पहचान लेते हैं, उसे उभारते भी हैं, किंतु उस द्वंद्व को नहीं पहचान पाते जो कबीर के यहाँ लोक और लोक के बीच है। कबीर यदि अनपढ़ हुए होते, वास्तविक अर्थों में ज्ञानी है, तो इसलिए वे परंपरागत वेद और शास्त्र जन मिथ्या आचार विचारों एवं भेद बुद्धि की भर्त्सना तो करते ही हैं, उन लोकाचारों की धज्जियां भी उड़ाते हैं। मसलन तमाम प्रकार के सामाजिक धार्मिक अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका आदि जो साधारण जन या लोक के बीच प्रचलित थे, आचार्य द्विवेदी उन्हें न केवल लोक धर्म के भीतर स्वीकार करते हैं, कहीं कहीं उन्हें डिफेंड भी करते हैं, उन्हें सही और उचित भी बताते हैं। कबीर यही कबीर है और इन आचार्यों की पकड़ से भी बाहर हो जाते हैं। वेद शास्त्र, कुरान और सुन्नत ही नहीं, पंडित और मुल्ला, पाणे और काजी ही नहीं, वे लोग को भी समान आक्रोश के साथ फटकारते हैं। इस लोकपरक विश्वासों को कबीर लोकाचार कहते हैं और ऐसे मिथ्या लोकाचारों की भी धज्जियां उड़ाकर राख कर देते हैं। कबीर संबंधी अपने पिछले निबंध में हमने कहा है कि कबीर मृत्यु के समय काशी छोड़कर मगहर चले गए थे। इस लोक विश्वास को तोड़ते हुए कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है और मगहर में मरने वालों को निकृष्ट पशु योनि, काशी छोड़ते समय लोक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, लोका तुम हो मति के फोड़ा, निरर्थक कर्मकांड, माला फेरना, गंगा नहाना, तीर्थ व्रत करना, जिसके लिए उपहास की वस्तु हो, जादू टोना, तंत्र और मंत्र, उसके लिए क्या होंगे, सहज ही अनुमान किया जा सकता है। कबीर ने किसी भी प्रकार के धार्मिक समन्वयवाद का विरोध किया, यह हम कह चुके हैं। पृष्ठ संख्या 280। वे वस्तुतः एक नए धर्म की बुनियाद रखना चाहते थे, वह था मानव धर्म। वे हिंदू, मुसलमान, जाति पाति, स्पृश्य अस्पृश्य से परे एक ऐसी मनुष्यता के विश्वासी थे जहां मनुष्य और मनुष्य में भेद न हो। कबीर के इस प्रयत्न को, उनकी इस सोच को, परंपरागत समाज व्यवस्था तथा धर्मशास्त्र विरोध को, उनका लोक धर्म विरोधी आचरण कहा जाए या नए लोक धर्म की प्रतिष्ठा, शुक्ल जी के लिए वह लोक धर्म विरोध हो, सामाजिक अराजकता का प्रश्रय हो, हमारे लेखे कबीर का यही लोक धर्म उन्हें अपने समय से आगे, हमारे अपने समय की सोच से बांधता है। यही कबीर का युगांतकारी कांत दृष्टा व्यक्तित्व है, जिसे शुक्ल जी पहचानते हुए भी अपने पूर्वाग्रहों को चलते रेखांकित नहीं कर सके, और न ही द्विवेदी जी रेखांकित करते हुए भी उसे मिथ्या लोकाचार से अलगा सके। जो कबीर का लोक धर्म है, वही नानक का तथा दूसरे संतों का है। इस लोक धर्म में अन्याय, अनीति, भेदभाव, निष्प्राण, रूढ़िवाद, धार्मिक वितंडावाद सबका विरोध है। उसका संबंध शास्त्र से हो अथवा लोक से, कबीर के इस लोक धर्म को पहचानना ही कबीर को सही रूप में पहचानना है। हम यह भी कह चुके हैं कि कबीर थोथे योग को भी अस्वीकार करते हैं। भस्म भभूत समाधि और साधना जन्य चमत्कारों से उनका कोई वास्ता नहीं। लोक को बराबर इस पाखंड के प्रति वे सावधान करते हैं। ऐसे कबीर की संगति किसी से नहीं बैठती। पोथी ज्ञान की हंसी उड़ाने वाले तथा पंडित वाद वदंती झूठा कहकर उनकी आलोचना करने वाले तथा काजी मुल्लाओं से हैरानी में डाल देने वाले और उन्हें विचलित कर देने वाले सवालों को पूछने वाले कबीर की यही प्रभुत्वशाली वर्गों ने, धर्म के ठेकेदारों ने उनके अपने समय में खिलाफत की जो स्वाभाविक की, वह तर्कसंगत था। अरे ओ ब्राह्मण, यदि तुम ब्राह्मणी के जाय हो तो बताओ कि तुम और किसी रास्ते से दुनिया में क्यों नहीं आए, और मुल्ला तुम बताओ कि खतवा माँ के पेट में करा के क्यों नहीं आए, या तुम दोनों बताओ कि भगवान मंदिर में रहता है, खुदा मस्जिद में, तो जहाँ मंदिर और मस्जिद नहीं है वहाँ किसकी ठकुराई है। कबीर के यही सवाल उनके समय में भी अनुत्तीर रहे और आज भी हैं। उनका मनुष्य सत्य उनके समय में भी एक आकांक्षा बना रहा, आज भी है। उनका लोक धर्म उनके समय अपने में काम्य रहा, आज भी है। किंतु जैसा हमने पिछले निबंध में कहा है, आने वाली शताब्दी कबीर की शताब्दी होगी। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत के मुख्य रूप में ख्यात है। सूफी संत वे हो या न हो, जैसा कि विजय देवनारायण शाही का कहना है कि वे कवि हो, प्रेम के कवि, किंतु उनकी सहृदयता और मनुष्यता को शुक्ल जी ने भी रेखांकित किया है। पृष्ठ संख्या 281। मुसलमान होते हुए भी उन्होंने अपने मनुष्य के होने का परिचय दिया। शुक्ल जी का यह कथन व्यक्ति और धार्मिक पहचान से परे उनकी इंसानी पहचान को महत्व देता है। कबीर या सगुण भक्तों की तरह जैसे किसी सामाजिक मिशन को लेकर नहीं चले थे। उनके द्वारा रचित पद्मावत में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि रामचरितमानस की भांति उनकी रचना सामाजिक स्थितियों की जरूरत या मांग के चलते हुई है। उनका समय भी गोस्वामी जी के आसपास का ही समय था।